तो नमस्कार, छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से दिनकर पाथुकर। आज हमारे साथ छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर पूर्व विधायक एवं जन नेता रामराव जी महाले आपसे रूबरू होने जा रहे। नमस्कार गुरु जी।
नमस्कार। नमस्कार
गुरु जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे कि राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत कईयों किसानों को आज भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है?
प्रमुख एक कारण है, योजना तो बहुत है लेकिन एक किसानों में जागरूकता नहीं है। और जो नेता लोग है जिन्होंने योजना जो प्रचार करना चाहिए प्रसार करना चाहिए, वो प्रसार प्रचार का अभाव है। जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी के नेता है उनकी इन बातों में रुचि नहीं है, तो जो सरकारी योजना है लोगों तक पहुँचा है। उनकी प्रमुख भूमिका यह है कि हम सत्ता में बैठे है, हम सत्ता का दुरुपयोग करके किस प्रकार अपने धन संपदा एकत्रित करेंगे। जैसा एक उदाहरण है, अब यहाँ पर अपन देखते हैं कन्हान नदी के रेत का उत्खनन से जोरों पर हो रहा है। जो सरकार की योजना लोगों के भलाई के लिए है वो तो भलाई तो होने रहे हैं, लेकिन रेत उत्खनन से जो एक झूमर समाज था, जो उनका एक उद्योग था डंगरावाड़ी लगाना और अपने उपजीविका चलाना, वो जो उद्योग बंद हो गया कि नदी में भारी गड्ढे बना दिए है, जेसीबी प्रोक्लेन से उत्खनन हो रहा है, कौन ठेकेदार है इसका पता नहीं है। लेकिन पता है कि जो जिसके पार्टी के जो पूर्व विधायक थे उनका परिवार इस उत्खनन में पूरा लगा हुआ है। कहीं पर भी लोगों को मालूम नहीं है कि इसका ठेकेदार कौन है। लोग कहते हैं कि ठेकेदार वो है, पूर्व विधायक उसका परिवार है। ये स्थिति है। इनका काम तो था कि महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो योजना सरकार ने बनाई है वो लोगों तक पहुंचाना, लेकिन उनमें रुचि नहीं है।
गुरुजी, हम आपसे जानना चाहेंगे, यदि हम रामापुरा क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ 80% ऐसा किसान है जिसको मनरेगा के तहत कपिल धारा कुआ मेट बंधान बकरी पालन सेट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसका कारण देखने में आया है कि उनकी खेती किसी और पंचायत में है और निवासी किसी और पंचायत में। तो इसमें सुधार करने की जिम्मेदारी किस जनप्रतिनिधि की है?
बिल्कुल जनप्रतिनिधि की है। मोतीखाटा में ऐसे प्रकरण है, कई जगहों पर ऐसे प्रकरण है। खेती की वो अलग हल्के में है, वो रहते अलग हल्के में है। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, आखिर खेती तो वहाँ पर है कि नहीं। तो ये परिवर्तन करके वो उनको लोन देना चाहिए, सारी फैसिलिटी देना चाहिए। ये कोई बड़ा भारी कोई ये थोड़ी है। वो किसान है कि गाँव में रह कर, ऐसा है अनेक गाँव है, छोटे छोटे गाँव है, फिर दूसरे गांव में खेती है, वो इस गांव में रहता है, तो वहाँ का सारी योजनाओं का लाभ उस किसान को मिलना चाहिए।
लेकिन वो वर्तमान में नहीं मिल पा रहा गुरु जी, इसके लिए क्या
उठाने चाहिए? उसके लिए जनप्रतिनिधि की बड़ी भारी भूमिका होना चाहिए। इसमें ये काम है जनप्रतिनिधियों का। वो तो बेचारे कई सालों से सरकारी योजना से वंचित रह रहे हैं। बहुत सारे गाँव के प्रकरण है और एक सामूहिक रूप से इसका एक जन आंदोलन भी करना चाहिए। लेकिन वो क्या है, एक के किसान के होने का जन आंदोलन खड़ा नहीं होगा। ये जनप्रतिनिधि जो है हमारे, उन्होंने ये कोई कठिन काम नहीं, बहुत आसान काम है, लेकिन वो अपनी भूमिका निभाए तो ये सरलता से हो जाएगा।
गुरु जी, जैसा कि आपने अभी अपने बातों में पवित्र कन्हान नदी के उत्खनन के संबंध में भी कुछ अपनी राय रखी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेत खनन अधिनियम के तहत जब यह नियम है कि खदानों का सीमांकन होना चाहिए, पोल गड़ना चाहिए, खदान के बाहर बोर्ड लगना चाहिए, खदान मालिक का नाम अंकित होना चाहिए, लेकिन यह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए है कि एक आज तो ये देखा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि पूरी कन्हान नदी का ठेका इन्होंने दे दिया है। कहीं पर भी जाए, कहीं से भी रेती निकाले, किसी रास्ते से निकाले, कोई प्रतिबंध नहीं है। और जो एग्रीमेंट है उनमें आपने बराबर कहा है कि खंभे गड़ना चाहिए, वो स्थान चिन्हित होना चाहिए, ठेकेदार का कौन ठेकेदार है वहाँ का नेम प्लेट लगना चाहिए, और जो रोड है रोड की कैपेसिटी कितनी है, कितने टन की है, उतना ही उससे भी कम लोड जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देखा गया है कि 10 टन के लोड बने हैं और 40 टन की रेती वहाँ से कोई देखने के लिए तैयार नहीं, पूरे रोड खराब कर दिए, गड्ढे खराब कर दिए। और इसका प्रमुख कारण यह है कि रेत के उत्खनन में मेरा तो आरोप है कि पूरी सरकार लगी हुई है, प्रशासन भी इसकी भागीदारी है। यदि इनकी भागीदारी नहीं होती तो जो एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ लिखा हुआ है उसका क्रियान्वयन होता। कोई क्रियान्वयन करने के लिए तैयार नहीं है। कई बार आवेदन दिए, निवेदन दिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि सभी ऐसा लगता है मेरे को कि क्या सभी राजनीतिक पार्टी के लोग लगे, प्रशासन भी लगा है, इसलिए कौन नियंत्रण करेगा? इसको नियंत्रण करने का अधिकार अभी जनता को है। और हमारा आंदोलन है अब 1 तारीख से हम कर रहे हैं कि जनता इसको आ गया है और इस पर प्रतिबंध लगाए और सरकार को बताए कहाँ तुम्हारे नेम प्लेट है, कौन ठेकेदार है, कहाँ चिन्हित किया है, ये सारा 1 तारीख से अपन करेंगे और सबका सहयोग लेंगे इस कार्यक्रम में।
गुरु जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये अत्यधिक अवैध उत्खनन के कारण नदियों ने अपनी दिशा और धारा बदल दी। जहाँ खेत है वहाँ नदी बन गई, जहाँ नदियाँ है वहाँ खेत बन गए, और जिसके कारण किसानों को बहुत सा नुकसान हुआ। इसकी भरपाई किसने करनी?
बिल्कुल, जहाँ अवैध उत्खनन होता है तो इससे क्या, अरे अवैध उत्खनन इतना हुआ है कि लोटी खड़ा का जो पुल टूटा है, आज 30-40 गांव के लोग वंचित हुए है। 2 साल पहले मैंने पत्र लिखा था कि भाई ये पुलिया के पास से रेत निकाल रहे, पुल टूट जाएगा। और अभी इस साल वही हुआ है कि पुल टूटा है। उस समय तो पत्रकारों ने कुछ लिखा नहीं मेरी चिट्ठी का, लेकिन अब पत्रकार लिख रहे हैं 3 मीटर तक गहराई से रेत निकाल गई पुलिया के कारण, पुलिया के इससे पास इससे पुलिया टूट गया है। परेशानी किसकी होगी? जनता को होगी ना। 30-40 गांव के लोग लंबा सफर करके संसार आना पड़ता है। ये सारी स्थिति है, इन पर नियंत्रण नहीं है। और अवैध उत्खनन से बड़े बड़े गड्ढे कर दिए, इससे नदी ने भी अपना प्रभाव बदल दिया है, जिसके कारण इस वर्ष किसानों का काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। ये सारे अवैध उत्खनन के परिणाम ही है और ये सरकार को दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो एक प्रभावित लोग है उन्होंने से धंधा बना लिया अपना, रेत का निकाल कर यहाँ से महाराष्ट्र में ले जाना, जबकि महाराष्ट्र में कन्हान नदी गई है, वहाँ इससे ज्यादा रेत महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है और यहाँ कोई प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए और सभी लोग इसमें आना चाहिए, चाहे किसी पार्टी के लोग है, सभी पार्टी के लोग, पत्रकार लोग, जनता जब सामने आएंगी तभी प्रतिबंध लगा सकते हैं, नहीं तो भविष्य में नदी विलुप्त तो होगी और अपना प्रभाव कहीं और से बदला देंगे। अभी वो देखा, मैंने जिमनी गया था, वहां पर भी ये स्थिति है। लोग तो बोलते हैं अब रेती निकल गई, केवल पत्थर बचे हैं नदी में बड़े बड़े, और हम नदी से पार करना भी हमारे कठिन हो गया है, इतनी दुर्गति करनी है। इसलिए इसका सोल्यूशन एक ही है, अब सब जनता को सामने आना पड़ेगा।
गुरु जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न। अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए छोटे छोटे गांवों में खनन विभाग ने अपनी जांच चौकियां बैठा के रखी है, किंतु अवैध उत्खनन रोकने में खनिज विभाग नाकाम है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे?
ये चौकियां जो है ना, ये खनिज विभाग की नहीं है, ये जो ठेकेदार है, जो पूर्व विधायक नाना मोर उसका परिवार, ये प्रमुख ही ठेकेदार। ठेकेदार तो कोई किसी के नाम पर ऐसा पता लगा है, लेकिन प्रमुख रूप से यही लोग है। ये चौकिया खनिज विभाग की नहीं है, एक चौकिया ये ठेकेदारों ने लगाई रखी है ताकि यहाँ से कोई रेत ना ले जाए, और इसमें प्रमुख भूमिका तो खनिज विभाग की है। ये सभी लिप्त है इस भ्रष्टाचार में, मेरा आरोप है। सभी अधिकारी यहाँ से छिंदवाड़ा तक, दोनों पार्टी के नेता भी इसमें लिप्त है, इसलिए इसकी आवाज कोई राजनीतिक पार्टी के लोगों ने उठाना चाहिए, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी का लोग उठाते नहीं है। और हमने लोग यदि उठाई तो उनको ये कहेंगे कि भाई इनका तो धंधा ही है ये समस्या उठाना है। ये चौकिया जो है ना, ये ठेकेदारों की चौकिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे पूर्व विधायक एवं जन नेता रामराव जी महाले, जिन्होंने अपने साक्षात्कार में यह संकेत दे दिया कि शासन प्रशासन ने अवैध उत्खनन को रोकने प्रयास नहीं किया तो आगामी 1 तारीख को उनका संसद कार्यालय के समक्ष आंदोलन की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।
तो ये मांगी करे हाँ।